बंधन हॉस्पिटल में थी। वो आर्या को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका फ़ोन बंद जा रहा था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चहलकदमी करते हुए उसकी नज़र सामने से आ रहे उसके मामा मामी पर पड़ी। उनके साथ एक और शख्स था जिसे देखकर बंधन बुरी तरह चौंक गई। ये आशुतोष सिंह ओबेरॉय थे। अब तक बंधन ने उन्हें फ़ोटोज़ या मैगज़ीन्स में ही देखा था। अब उन्हें अपने सामने देखकर उसकी आंखें नम होने लगी। वो तुरंत दूसरी तरफ घूम गई और खुद के इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। कंट्रोल बंधन सिंह ओबेरॉय, याद रखो तुम किसकी बहन हो। लेकिन ब्रो ने कहा था वो कभी मुझसे मिलने नहीं आएंगे, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बंधन वहाँ खड़े खुद से बातें कर रही थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बंधन ने पलटकर देखा तो वो आशुतोष थे। बंधन ने कुछ भी बोलने से पहले देवेश और प्रतिभा की तरफ देखा। देवेश ने मुस्कुराकर पलकें झपकाई। बंधन आशुतोष से पहली बार मिल रही थी, इस वजह से उनसे बात करने के लिए झिझक रही थी। उसे चुप देखकर आशुतोष ने कहा, आर्या ने अपनी बहन को बिल्कुल सही नाम दिया है, ऐसे लग रहा है जैसे बंधन ही मेरे सामने खड़ी है। आज आशुतोष ने बंधन को पहली बार देखा था तो उनकी आंखें भी नम हो गईं। उन्हें नहीं पता था कि वो बिल्कुल अपनी माँ की परछाई लगती हैं। उन्होंने बंधन को गले लगा लिया। माफ़ी बहुत छोटा शब्द होगा, मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने जो किया है उसके बाद तुम्हारे लिए मुझे माफ़ करना आसान नहीं है। तुमसे वादा करता हूँ कि पिछले 21 सालों में मैंने जो गलतियाँ की हैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा, आशुतोष ने उसे सहलाकर कहा। बंधन उनसे अलग हुई और अपने आंसू पोंछे। तभी देवेश ने कहा, शिवी कैसी है? पारस ने उन्हें इंजेक्शन देकर बहुत मुश्किल से सुलाया है, वरना वो तो भाई के पास जाने की जिद कर रही थी। ऊपर से भाई भी न जाने क्यों मेरे कॉल को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, बंधन ने जवाब दिया। शिवनंदिनी को केयर की ज़रूरत है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि उसकी ज़रूरत आर्या को भी है। मुझे पापा जी ने सब कुछ बता दिया था, उन्होंने तो कहा था शिवनंदिनी किडनैप हो गई है, फिर वो यहाँ कैसे हैं? आशुतोष ने हैरानी से पूछा। उन्हें शिवी के वहाँ होने का सच पता नहीं था, वो तो वहाँ बंधन से मिलने आए थे। मैं कल अपने बैचमेट्स के साथ यहीं पास के किसी गांव में हॉस्पिटल में कैंप लगाने गई थी। वहीं हॉस्पिटल के पास किसी घर में भाभी मुझे मिली, उन्हें कुछ लोगों ने किडनैप करके रखा था। वहाँ वो आदमी भी था जिसने एली को मारा था, अब वो पुलिस के हिरासत में है तो हमें उससे कोई खतरा नहीं, बंधन ने उन्हें सारी कहानी बता दी। पूरी बात सुनने के बाद आशुतोष ने कहा, आर्या को शिवी के यहाँ होने का पता नहीं है, ज़रूर जिम वॉटसन उसे शिवी का नाम लेकर कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा होगा, वो कॉल नहीं उठा रहा तो हमें उस तक पहुँचना होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है जीजा जी? अगले 2 घंटे तक मुंबई की कोई फ्लाइट नहीं है, हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी, देवेश ने हैरानी से कहा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं प्राइवेट जेट बुक करता हूँ, बस शिवी को ट्रैवल करने के हिसाब से तैयार कर दो। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, उस इंसान की सिक्योरिटी भी ज़रूरी है जो इन सब के पीछे था। आशुतोष ने पूरा मामला अपने तरीके से हैंडल करने के लिए अपने हाथ में ले लिया। आशुतोष को बंधन और आर्या के केयर करता देख देवेश और प्रतिभा को भी अच्छा महसूस हो रहा था। प्रतिभा बंधन के साथ रुकी जबकि देवेश आशुतोष के साथ चला गया। इन सब के बीच सुबह के 9 बज चुके थे जबकि हियरिंग का टाइम 11 बजे का था। आशुतोष देवेश के साथ पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स के चलते महेश की वहाँ की सिक्योरिटी टाइट करवा दी थी ताकि कोई उस तक पहुँच ना सके। पुलिस स्टेशन में अपना काम खत्म करके आशुतोष ने देवेश को घर भेज दिया तो वहीं बंधन शिवी और पारस के साथ एयरपोर्ट पहुंची। आशुतोष वहां पर पहले से मौजूद था। शिवी अब तक सो रही थी इसलिए वो व्हीलचेयर पर थी और पारस उसे हैंडल कर रहा था। आर्या से बात हुई तुम्हारी? आशुतोष ने पूछा। भाई मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, अब तक तो हियरिंग शुरू हो गई होगी, हम टाइम पर पहुँच जाएंगे ना, बंधन ने परेशान स्वर में कहा। कोशिश तो यही है, चलो जल्दी आओ, आशुतोष ने कहा और फिर वो लोग जेट में बैठ गए। वहां से उन्होंने मुंबई की उड़ान भरी। वो लोग देहरादून से निकले तब तक सुबह के 10 बज चुके थे। दूसरी तरफ कोर्ट की पहली हियरिंग खत्म होने के बाद जज साहब ने एक ब्रेक अनाउंस किया था। ब्रेक के अंदर जिम तुरंत बाहर आया, उसने अंदर नंदिनी को शिवी के नाम से ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। तुम लोगों को अब पता चलेगा कि मेरे खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है, बड़बड़ाते हुए जिम ने अपना मोबाइल निकाला और रॉकी को कॉल करने लगा। वो उसे कॉल मिला पाता उससे पहले नील ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। आपने इतने लोगों की जिंदगी के साथ खेला है, कम से कम शिवी को तो बख्श दीजिए। सीरियसली मिस्टर वॉटसन, आप उसके साथ, मुझे तो बोलते हुए भी शर्मा रही है, आप किसी लड़की के साथ रेप करवाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? नील की आंखें नम थीं, उसका बिहेवियर ओवर इमोशनल था जिस पर वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। उन लोगों ने मुझे मजबूर किया है, अब तो तुम भी उनके साथ हो और उन्हीं की लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तुम मेरे बेटे हो। आई विश मैं नहीं होता, मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता और ना ही हमारे रिलेशन को, पर मैं यही चाहूंगा कि मैं आप जैसा कभी ना बनूं, नील ने उनकी बात बीच में काटकर कहा। फिर उन्होंने मिस्टर वॉटसन का फ़ोन वापस उनके हाथ में रखा और बोला, बाकियों की नज़रों में आप अपनी इज्जत खो चुके हैं,
लेकिन अगर खुद की नजरों में थोड़ी सी भी इज्जत बाकी है तो शिवी के साथ कुछ भी गलत करने से पहले सोच लीजिएगा। अपनी बात कहकर नील वहां से चला गया। जिम उसे जाते हुए देख रहा था। ठीक है, बाकी बातों को जाने भी दूं, तब भी उस लड़की को मरना होगा। यही मेरा आखिरी डिसीजन है, जिम ने खुद से कहा और फिर रॉकी को कॉल लगाने लगा। उसने फिर रॉकी, महेश, लीजा और विक्की, अपने चारों आदमियों को कॉल लगा लिया, पर सबका फोन बंद जा रहा था। आखिर में उसने गौरव मलिक को कॉल किया। कहाँ हो तुम? अब तक तो देहरादून पहुंच गए होंगे, अपडेट कौन देगा? जिम ने उसके कॉल उठाते ही गुस्से में कहा। मैं आपको फोन करने ही वाला था सर जी, यहाँ मामला पूरी तरह बिगड़ गया है। न जाने कैसे पुलिस पहुंच गई। ना तो आपकी बेटी का आता पता है और ना ही हमारे आदमियों का। मैंने ये सुना था कि महेश और लीजा को पकड़ लिया गया है। मैं तो कहता हूँ आप भी अपनी जान छुड़ाकर भाग जाइए। और हाँ, आज के बाद मुझे कॉल मत कीजिएगा, आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। गौरव मलिक ने जल्दबाजी में उसे पूरी बात बता दी। उसने जिम के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत अपना फोन बंद करके उसे ऑफ कर दिया। शिट, ये नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अगर उन्हें पता चला कि शिवी वहां से जा चुकी है तो पूरा मामला उलट जाएगा, जिम ने बड़बड़ाकर कहा। उसे गौरव मलिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अब यहां नहीं रुक सकता, अगर शिवाई और बेगुनाह प्रूफ हो भी गया तो मैं नहीं, ये लोग मुझे नहीं पकड़ सकते, मुझे यहां से जाना होगा। जिम ने वहां से जाने का डिसीजन लिया। वो जल्दबाजी में वहां से निकल रहा था तभी वो विकास शुक्ला से टकरा गया। क्या हुआ, कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है तो भागने का सोच लिया? अब तक जिंदगी में सच का साथ दिया है तो आगे भी दूंगा, क्रिमिनल को इस तरह कोर्ट रूम से तो बिल्कुल नहीं भागने दूंगा, विकास शुक्ला ने मुस्कुराकर कहा। उसने जिम के हाथ को कसकर पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगा। आई सेड लीव माई हैंड बास्टर्ड, जिम अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर सब बेकार था। इतने में कोर्ट की बेल बज चुकी थी। 2:30 बजे के साथ ही कोर्ट का अगला सेशन शुरू होने को आ गया।
विकास शुक्ला जबरदस्ती जिम को कोर्टरूम के अंदर ले गया। अब उसके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अगली कार्यवाही शुरू होने के साथ ही जज साहब ने शिव से कहा, पिछली कार्यवाही में मैंने आपको सच बोलने का कहा था, अगर आपने फिर झूठ बोला तो आपको उसकी सजा दी जाएगी और साथ ही जुर्माना भी, फिर बेगुनाह होते हुए भी आपको और सजा भुगतनी होगी। शिव कुछ बोलता उससे पहले आर्या अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने कहा, मुझे कुछ कहना है। ठीक है, आप विटनेस बॉक्स में आ जाइए, जज साहब ने उसे अपनी बात रखने की इजाज़त दे दी। विटनेस बॉक्स की तरफ जाते हुए आर्या ने मुस्कुराते हुए जिम वॉटसन की तरफ देखा। उसकी स्माइल देखकर वो समझ गया था कि आर्या अब कुछ करने वाला है जो ज़रूर उसी के खिलाफ होगा। आर्या विटनेस बॉक्स में आया और अपनी बात कहते हुए बोला, उस टाइम जो भी हुआ था वो मेरी आंखों के सामने हुआ था और उसका कारण भी मुझे अच्छे से पता है। मेरा एक ऐसी कंपनी को खरीद करने की कोशिश करना जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। उस रात जब हम पर अटैक किया गया था तब खुद को डिफेंस करने के लिए मैंने उस आदमी का पैर पकड़ा था और गलती से उसका जूता निकल गया। उसने सॉक्स नहीं पहने थे, मुझे आज भी याद है उसके राइट लेग की 2 फिंगर्स नहीं थी, जबकि मिस्टर अय्यर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिनों पहले इत्तफाक से मैं ऐसे ही एक आदमी से मिला जिसके पैर में उसी तरह 2 फिंगर्स नहीं थी। मुझे नहीं पता वो कौन है, पर इतना ज़रूर पता है कि ये सब कौन करवा रहा था। मुझे इन सब में डिज़ाइनिंग विला के मालिक गौरव मलिक और उनकी मेन ब्रांच लंदन के ऑनर मिस्टर जिम वॉटसन पर डाउट है। सॉरी डाउट वर्ड यूज़ करना गलत होगा योर ऑनर, मुझे इन पर पूरा यकीन है कि इन्होंने ही ये सब किया है। क्या आपके पास इन सब का कोई सबूत है? जज ने पूछा। आर्या कुछ कहता उससे पहले मिस्टर शुक्ला ने कहा, ये सच कह रहा है योर ऑनर, मिस्टर वॉटसन ने यहाँ से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन मैंने उन्हें पकड़ लिया। इन्होंने कोर्ट केस शुरू होने से पहले शिव अय्यर से भी बात की थी, ज़रूर उन्हें धमकाने के लिए उनसे बात की होगी। ये सब झूठ बोल रहे हैं, जिम अपनी जगह से खड़े होकर चिल्लाया। इस बीच एक आदमी जो कोर्टरूम के बाहर खड़ा होकर गवाहों को पेश होने को बुलाता है वो अंदर आया। अंदर आकर उसने जज के पास आकर कुछ कहा। उसकी बात सुनकर जज धीरे से मुस्कुराया और कहा, वेल, ये केस दिन ब दिन और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, लगता है आज सारे राजों से पर्दा एक साथ उठने वाला है। मैं अपनी तरफ से उन्हें बयान देने की इजाज़त देता हूँ, उन्हें अंदर बुलाया जाए। जज साहब रहस्यमयी तरीके से बात कर रहे थे। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। अचानक केस में एक नया मोड़ आ गया था और एक नया गवाह, वो कौन था इस बारे में कोई नहीं जानता था। क्या लगता है आपको कोर्टरूम में गवाही देने कौन आया होगा? अगर कोई आइडिया है तो समीक्षा में लिख सकते हो। इसके बाद एक पार्ट और आएगा और फिर एक और खूबसूरत सफ़र खत्म हो जाएगा। थैंक्स इस कहानी पर भी अपना प्यार देने के लिए।